दिन भर 10 जनवरी शुक्रवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमेरिका ने कहा ईरान ने गिराया था यूक्रेनी विमान, कनाडाई प्रधानमंत्री ने भी जताया शक।
Foreign Minister François-Philippe Champagne spoke with Iranian Foreign Minister Zarif. Minister Champagne.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लगे सभी प्रतिबंधों की समीक्षा करने को कहा।
अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस बेंच ने जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है।
और आज बीबीसी के पिटारे से सुनवाएंगे आपको काम की बात की एक झलक।
आपको एक बात पता है, बच्चे पैदा कैसे होते हैं पता है?
नहीं।
कुछ तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, आसमान से आते हैं?
पता नहीं।
महावारी के
लेकिन सबसे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। यूक्रेन ने कहा है कि अमेरिका के अधिकारियों ने उन्हें विमान दुर्घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी है। बुधवार को ईरान में हुई इस दुर्घटना में 176 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने इससे पहले संकेत दिए थे कि यूक्रेन के यात्री विमान को ईरान की मिसाइल ने मार गिराया था। ईरान ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन वो दूसरे पक्षों को जांच में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दे रहा। इराक के सबसे प्रभावशाली शिया मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा है कि किसी भी विदेशी ताकत को इराक की किस्मत का फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। शुक्रवार की नमाज के बाद अली अल सिस्तानी ने इराक में ईरान और अमेरिका के हमलों की निंदा की और इसे देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सिस्तानी ने कहा कि अगर ये दोनों शक्तिशाली देश ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे तो इससे स्थिति और ख़राब होगी और हल नहीं निकलेगा। इराक अपने देश के अंदर भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। वहां महीनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। अली अल सिस्तानी ने कहा, पिछले दिनों जिस तरह से इराक की संप्रभुता का लगातार उल्लंघन हुआ और आक्रामकता दिखाई गई, उससे ये साफ है कि इसके जिम्मेदार देश कमजोर हैं। इराक स्वतंत्र रहना चाहिए और उसका नेतृत्व उसके अपने लोग ही कर सकते हैं। इराक के फैसलों में विदेशों की कोई भूमिका नहीं हो सकती। ये थे इराक के शिया मुस्लिम धर्मगुरु अली अल सिस्तानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई रैलियों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और जंगल की आग से निपटने के सरकार के तरीकों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने ये मांग भी की कि दमकल कर्मियों को उनका वेतन दिया जाए। एक प्रदर्शनकारी महिला ने कहा,
Immensely devastating. Yeah, really, really depressing, to be honest. Surreally feels.
देश में इस वक्त अंधकारपूर्ण समय चल रहा है, हर तरफ विनाश है और ये सब निराशाजनक है, ये बहुत दुखद है। ये थी ऑस्ट्रेलिया की एक प्रदर्शनकारी महिला। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने कहा है कि कांगो गणराज्य में लैंडू और हेमा समुदायों के बीच हुए संघर्ष की वजह से कम 700 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटोरी प्रांत में जिस तरह की हिंसा हुई वो मानवता के खिलाफ अपराध कही जा सकती है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि पूर्वी सीरिया में हुए एक हवाई हमले में ईरान समर्थक मिलिशिया समूह के 8 लड़ाकों की मौत हो गई है। समूह के मुताबिक एक अज्ञात विमान ने इराक की सीमा से लगने वाले एक इलाके में हाशर अल शाबी मिलिशिया के हथियार डिपो को निशाना बनाकर हमला किया। बताया जा रहा है कि ईरान समर्थक मिलिशिया के मूवमेंट पर पहले से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। इससे पहले जब भी इस मिलिशिया समूह पर हमला हुआ तो इसका आरोप अमरीका या इसराइल पर लगाया गया। सेंट्रल नाइजीरिया के एक गांव में हुई हिंसा में 12 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक दरअसल वहां जमीन के अधिकार को लेकर किसानों और खानाबदोश फुलानी चरवाहों के बीच झड़पें हुई थीं। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को गांव में भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक सहायता समूह मर्सी कॉर्प के मुताबिक पिछले 5 सालों में किसानों और चरवाहों के बीच हुई हिंसा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने कहा है कि उन्हें कई खुफिया सूत्रों से पता चला है कि तेहरान के नज़दीक बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए यूक्रेनी एयरलाइंस के विमान को ईरानी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तीनों देशों का मानना है कि ईरान ने गलती से मिसाइल हमला किया था। इस पर ईरान ने सख्त नाराजगी जताई है और विमान में मारे गए लोगों के देशों से ईरान आकर जाँच करने का भरोसा दिलाया है। वहीं यूक्रेन ने कहा है कि उसे अमरीकी अधिकारियों ने कुछ आंकड़े दिए हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
ईरान ने अमेरिका समेत उसके सहयोगियों पर यूक्रेनी एयरलाइंस के विमान के क्रैश होने के कारणों को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। ईरानी सरकार के प्रवक्ता अली रबई ने कहा कि पश्चिमी देशों का ये कहना कि ईरान की मिसाइल से विमान गिराया गया, ये इस घटना में मारे गए 176 लोगों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने के जैसा है। रबई ने कहा कि पश्चिमी देशों के अधिकारियों का ये दावा एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान ने विमान निर्माता कंपनी बोइंग समेत अमेरिका, यूक्रेन और कनाडा की वायु सुरक्षा एजेंसियों को इस दुर्घटना की जांच में मदद के लिए आमंत्रित किया है। वहीं ईरान के नागरिक विमानन प्रमुख ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये वैज्ञानिक रूप से असंभव है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत माजिद तख्त ने इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने कहा, ईरान में विमान दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के परिवारों को लेकर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस घटना की एक गहन जांच जारी है। ये थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत माजिद तख्त के शब्द। इस दुर्घटना में 176 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें कनाडा के 63 लोग थे। क्या इस तरह का हमला संभव है? इस पर न्यूयॉर्क में सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व कमर्शियल पायलट एंथनी रोमन कहते हैं,
The British, Canadian and American intelligence services have combined
ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका की खुफिया सेवाओं ने सैटेलाइट और इंफ्रारेड तकनीक के आधार पर पता लगाया है कि यूक्रेनी विमान पर दो ईरानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला किया गया। इसमें रूस की मध्यम दूरी की मिसाइलें हो सकती हैं, जिन्हें मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को तबाह करने के लिए बनाया गया है। ये सभी सबूत ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी हैं। ये थे सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व कमर्शियल पायलट एंथनी रोमन के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना पर संदेह जताया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्हें कई सूत्रों से खुफिया जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलते हैं कि यूक्रेन का यात्री विमान ईरान के जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से हिट होने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उन्होंने कहा,
Foreign Minister François Philippe Champagne spoke with Iranian Foreign Minister Zarif.
विदेश मंत्री फ्रांसवा फिलिप शाम्पानिया ने ईरान के विदेश मंत्री जरीफ से बात की है। शाम्पानिया ने साफ कर दिया है कि कनाडा के अधिकारियों को ईरान आने का आदेश दिया जाए, पीड़ितों की पहचान कर जांच में भाग लेने दिया जाए। साथ ही उन्होंने इराक में गठबंधन सेनाओं के बेस पर हमले की निंदा की, जहां पर कनाडा के सैनिक भी हैं। ये थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के शब्द। कल रात अमरीकी मीडिया का कहना था कि ईरान ने गलती से यूक्रेन के एक यात्री विमान को मार दिया था, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि विमान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अमरीकी न्यूज चैनल CBS के अनुसार अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान को ईरान की मिसाइल ने हिट किया था।
अमरीका का कहना, ईरान ने गिराया था यूक्रेन का विमान। अधिक जानकारी दे रही थी सर्वप्रिया सांगवान। ईरान के बाद रुख करते हैं भारत का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश से सभी प्रतिबंधों की एक हफ्ते के अंदर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की तीन जजों की बेंच ने कहा, जम्मू कश्मीर प्रशासन को CRPC की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंध के सभी आदेश प्रकाशित करने हैं, ताकि प्रभावित लोग इन्हें चुनौती दे सकें। साथ ही बेंच ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में पेश होने वाले वकील सदन फरासत ने कहा,
The Supreme Court was very clear on this, that indefinite internet ban by the state is not permissible under our constitution.
Supreme Court ने साफ कहा है कि राज्य द्वारा इंटरनेट पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध की संविधान के तहत अनुमति नहीं है और यह ताकत का दुरुपयोग है। धारा 144 के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धारा 144 का इस्तेमाल करके वास्तविक विरोध को नजरअंदाज करने का तंत्र नहीं अपनाया जा सकता है। ये थे वकील सदन फरासत के शब्द। वहीं अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत प्रशासित कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के खिलाफ कई याचिकाकर्ताओं में से एक कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा,
अब आखिरी उम्मीद जो थी वो जम्मू कश्मीर के अवाम को सुप्रीम कोर्ट में थी। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस बेंच ने न सिर्फ लाखों बल्कि 125 करोड़ जम्मू कश्मीर के अवाम के मुताबिक निर्णय दिया है और सरकार को 3-4 चीजें बताई हैं जो हर व्यक्ति के दिल में थी। वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल पल्स फील कर गया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, नब्ज एक पहले कहा है जिसे मैं पॉलिटिकल तरीके से देखता हूं और सुप्रीम कोर्ट समझ गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों के बाद भारत प्रशासित कश्मीर में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, यही जानने के लिए मैंने श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
जी देखें, ऑब्जर्वेशंस को लेकर एक आशा जगी है, वो ये कि अब शायद मतलब इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते किसी न किसी तरह की राहत तो मिलेगी इंटरनेट को लेकर। लेकिन जिस फैसले की अपेक्षा की जा रही थी, जैसे देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, एक साथ क्लब किया है सारी पिटिशंस को, चूंकि ये पिटिशंस नई है, अगस्त से फाइल हुई है तो 5 महीने से पिटिशंस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है चुप्पी भर ली और आज अचानक से क्लब किया, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट था यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत ये जो है निर्णय आ जाएगा कि गवर्नमेंट को जो है फौरन ये जो प्रतिबंध है वो हटाना चाहिए और इंटरनेट को रेस्टोर करना चाहिए। लेकिन उसके बदले में क्या आया, ऑब्जर्वेशन तो अलग बात है, लेकिन ये आया कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कहा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर इसका रिव्यू करें और वो सब ऑर्डर्स जिसके अंतर्गत आपने प्रतिबंध लगाए हैं उनको आप जो है पब्लिक डोमेन में लाएं, और दूसरा ये आप रीजंस बताएं, वो कारण बताएं जिसकी बेसिस पे आपने 5 महीने से ज्यादा समय तक इंटरनेट बंद रखा है। तो जाहिर है लोगों को ये समझ आता है कि सरकार को एक बड़े जुडिशियल प्लेटफॉर्म पे ये कहने का मौका दिया गया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसकी काफी निंदा भी हो रही थी और काफी आक्रोश एक तो लोगों में है और इंटरनेशनली भी इसको इंटरनेट गैग के तौर पे देखा जा रहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो बंद है। तो मिलीजुली प्रक्रिया देखी गई लोगों में, लेकिन खास तौर से ये निराशा हुई कि सुप्रीम कोर्ट से ये सुनना चाहते थे लोग कि कल से जो है इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन उसके बदले में एक ऐसा जो है निर्णय लिया गया, ऐसा वर्डिक्ट सामने आया है जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट को लिखेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट को किसी और तारीख पे सुनेगी, तो इससे ये इंतजार जो है ये लंबा ही हो गया।
जी रियाज, हमें बताएं कि जो एक राजदूतों का प्रतिनिधि मंडल है, आज उसका आखिरी दिन था, तो क्या क्या उसकी सरगर्मियां रही वहाँ पर, वो कहाँ कहाँ गया?
कल तो वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ जो भारतीय सेना की 15वीं कोर का हेडक्वार्टर है वहाँ पे गए और वहाँ पे सेना के उच्च अधिकारियों ने, जिनमें कोर कमांडर भी थे, उन्हें ब्रीफ किया जो यहाँ की स्थानीय स्थिति है और खास तौर से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्थिति बनी हुई है। उन्हें ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से इस साल 3,500 बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, बस्तियों को निशाना बनाया गया और जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी निशाना बनाया गया। उसके बाद ये प्रतिनिधिमंडल जो है एक होटल में चला गया जहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसे राजनेताओं ने बात की जिन्हें नजरबंद नहीं रखा गया था या जेल में नहीं रखा गया था, क्योंकि उन्होंने 5 अगस्त को जो निर्णय पार्लियामेंट से आया था अनुच्छेद 370 को हटाने के बारे में उसका विरोध नहीं किया था। और उसके बाद जो ये प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ के कुछ चंद ही पत्रकारों को यहाँ वहाँ बुलाया गया था और कुछ संपादकों को भी बुलाया गया था और उन्होंने उनके साथ बात की और उन्होंने जो है स्थानीय मुद्दों पे उनके साथ बात की।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली पुलिस ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 जनवरी को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा को लेकर जारी अपनी जांच के बारे में बताया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय टिर्की ने बताया कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें और वीडियो की मदद से 9 छात्रों की पहचान की है और उन्हें इस बारे में जल्दी ही नोटिस भेजा जाएगा। इन छात्रों में जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष, जेएनयू छात्र संघ की काउंसलर सुचेता तालुकदार, चुनचुन कुमार, प्रिया रंजन, डोलन सामंत, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल, पंकज मिश्रा और विजय भास्कर नामक छात्र शामिल हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने कहा कि उनकी जांच केवल 5 जनवरी तक ही सीमित नहीं है बल्कि जेएनयू में 1 जनवरी से हिंसक घटनाएं हो रही थी। उन्होंने कहा कि अभी किसी छात्र को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, पहले उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने कहा,
अभी तक जो मेरा इन्वेस्टिगेशन है पिछले चार दिन में वो यहाँ तक पहुँचा है. आप लोग सोच रहे हो मैंने डिटेन अभी किसी को नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू सर्व नोटिस ऑन दीज पीपल एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन कि आपके साथ में कौन था, आप यहाँ क्या कर रहे थे. वो सारी चीजें अभी हमारी तफ्तीश इसमें, मैं तो ये बोलूंगा कि तफ्तीश अभी शुरू हो रही है.
दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस की तफ्तीश पर सवाल उठाए. उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें शामिल लोगों को क्यों आरोपी नहीं बनाया गया. वहीं छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने कहा कि उन्हें केवल आरोपी क्यों बनाया जा रहा है, उन लोगों को क्यों नहीं आरोपी बनाया जिन्होंने नकाब पहनकर हिंसा की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा सुनिए.
सारे प्रशासन के ऑफिशियल थे, उसमें इस अटैक का प्लान हुआ है. अब ऐसे ग्रुप में अगर प्लान हो रहा है वाइस चांसलर, उसमें लिखा जा रहा है कि वाइस चांसलर तो अपना है, वो तो हमारे साथ है.
और फिर उनको सस्पेक्ट क्यों नहीं है उन पे? अच्छा है कि ओशी घोष इज वाई इज द सस्पेक्ट ओनली एंड वाई इज धनंजय सिंह नॉट द सस्पेक्ट? वाई इज द वाइस चांसलर नॉट द सस्पेक्ट फॉर इंस्टिगेटिंग? बिकॉज देयर इज नो फोटो, बिकॉज धनंजय सिंह
यहाँ सारा मुद्दा है वायलेंस पे आ गया है. आज सारा मुद्दा जो है जो एजुकेशन के लिए लड़ा जा रहा था फीस हाई के खिलाफ, उस पर सवाल नहीं हो रहा था. कहीं ना कहीं वाइस चांसलर का इसके पीछे ये साजिश था कि जो जिस मुद्दे के कारण वो उसके ऊपर प्रेशर बन रहा था उसके चलते उसको हटाने के लिए उसने कहीं ना कहीं इस साजिश को रचा है और उसको मुद्दा भटकाने की कोशिश की गई है.
दिल्ली पुलिस के बाद जेएनयू छात्र संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस.
बीबीसी इंडिया बोल.
जेएनयू के छात्रों के साथ सहानुभूति जताने जेएनयू पहुंची दीपिका पादुकोण. छात्रों के खिलाफ हिंसा और नागरिकता कानून के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं अनुराग कश्यप और स्वरा भास्कर जैसे फिल्मी सितारे. सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतर रही है फिल्मी हस्तियां? रखिए अपनी राय इंडिया बोल में. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इस शनिवार 11 जनवरी को शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 या 1811-7001 पर.
बीबीसी इंडिया बोल.
कल शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल में जरूर भाग लें. बढ़ते हैं आगे. श्रोताओं, आप जानते हैं कि 31 जनवरी से बीबीसी हिंदी सेवा का रेडियो प्रसारण बंद हो रहा है, इसलिए हम आजकल आपको अपने खजाने से प्रसारित कुछ ऐसी श्रृंखलाओं की झलक सुना रहे हैं जो काफी सराही गई और आज भी श्रोताओं के जहन में उनकी यादें ताजा हैं. कल हमने आपको सुनाई थी संध्या के दीप की झलक. आज सुनिए यौन शिक्षा पर आधारित सीरीज काम की बात और सुनिए उसकी एक झलकी. 15 एपिसोड की इस सीरीज का प्रसारण जनवरी 1996 से शुरू हुआ था और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं परवेज आलम.
नमस्कार, मेरा नाम परवेज आलम है और मैं आपसे काम की बात किया करूंगा. कम से कम 2000 वर्ष पुराने कामसूत्र में बातें काम की हैं, लेकिन केवल काम की नहीं बल्कि काम की भी. कामसूत्र के 7 अध्यायों में से केवल एक में यौन या सेक्स के आसनों पर जोर है, बाकी में औरत मर्द के रिश्तों का जिक्र है. भावनाओं और प्रेम के अथाह सागर में डूबने की बातें हैं. आध्यात्मिक मिलन पर जोर है. कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन मानवीय जीवन के 3 उद्देश्य मानते हैं, धर्म, काम और अर्थ. जिंदगी के दामन में अगर तीनों समा जाएं तो फिर बात ही क्या है. धर्म और अर्थ की शिक्षा दीक्षा हम समाज से हासिल करते हैं, लेकिन काम तो हमारी प्रकृति और बढ़वार का हिस्सा है. अपने आप हम काम का आनंद लेना जान जाते हैं, फिर भी बहुत सी बातें हम नहीं जान पाते. शायद इसलिए कि प्राकृतिक रूप से हमें सीखने का मौका भी नहीं मिलता. हमारे शरीर की जानकारी हमसे ही छिपाई जाती है. मिलिए इस लड़की से.
मेरी उम्र 12 साल है.
12 साल की हैं आप? अच्छा, लेकिन लंबी बहुत है, 12 साल की लगती नहीं.
खानदान में सब लंबे नहीं.
खानदान में सब लंबे हैं
जी.
आपको एक बात पता है, बच्चे पैदा कैसे होते हैं पता है?
नहीं.
कुछ तो आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं, आसमान से आते हैं?
पता नहीं.
माहवारी के बारे में कुछ पता है?
अभी मेरी छोटी उम्र है, मुझे पता नहीं.
अच्छा, किसी ने बताया नहीं घर में?
नहीं, अभी नहीं.
आप इस लड़की की चची हैं, 12 साल की है. इसे ये भी नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इसे ये भी नहीं पता कि माहवारी कैसे होती है.
अभी
आपने बताया नहीं कभी?
अभी होती नहीं है तो बताएं तो जब होंगे, जब बताएंगे.
पहले से बता दें तो अच्छा है शायद.
अब ऐसे पहले से बताना भी तो सही नहीं है. ऐसे
क्यों, क्या होगा उससे?
जब
तो इसलिए पहले से बताया नहीं, बच्चियां भी शर्माती हैं ना, इसलिए बताया नहीं जाता पहले से।
पहले से बताया नहीं जाता, आमतौर पर ये जानकारियां तब मिलती हैं जब देर हो चुकी होती है। भारत में 50% से भी अधिक लड़कियां बिना किसी जानकारी के जब पहली बार माहवारी के लक्षण देखती हैं तो उन्हें गहरा शॉक लगता है, वो घबराती हैं। बहुत से लड़के 8वीं-9वीं कक्षा से हस्त मैथुन के रोमांच से वाकिफ हो जाते हैं और कुछ को ये राज जानने में बरसों लग जाते हैं। मिले इस छात्र से।
ये मैंने जो है BSc में स्टार्ट किया जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पर था, तो मेरे किसी दोस्त ने मुझको बताया। हालांकि मैंने किताबों में पढ़ा था कि मास्टरबेशन होता है, लेकिन दोस्तों ने एक बार मुझको बताया, देन आई ट्राइड इट, तब मैंने इसको प्रयास किया। इट वाज गुड, नॉट बैड।
अच्छा था, बुरा नहीं था। किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को देर से। दिल्ली की नीलम का संबंध परिवार सेवा संस्था से है और आप यौन शिक्षा के काम में लगी हैं।
पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से और टेलीविज़न पे जितने प्रोग्राम्स आते हैं, इतने कार्यक्रम आते हैं, फिल्म आती हैं, उनके प्रभाव से। और आजकल ये बात भी है कि जो हमारा समाज का माहौल चेंज हो रहा है कि माता पिता बहुत टाइम लगा नहीं पाते हैं बच्चों के साथ, दोनों बाहर काम करते हैं, घर में कोई होता नहीं है, वो लड़कों का खास तौर पे काफ़ी पहुँच है ब्लू फिल्म्स तक और दूसरी तरह की फिल्म्स तक और लिटरेचर तक, हर तरह के, और फ्रेंड्स के साथ, और वो काफ़ी कुछ उनकी वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं वो इस बारे में, सेक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में। और एक बड़ी अजीब बात यह है कि वो लड़कियों से ज़्यादा अपने क्लास की और अपने एज ग्रुप की लड़कियों से ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं।
भारतीय फिल्में साफ सुथरी हों या अश्लील, लड़के लड़की के प्रेम प्रसंग के बिना वो अधूरी हैं। जब बड़ा हो रहा बच्चा आपसे पूछे कि लड़के लड़की का प्यार कैसे होता है, प्रेम में क्या क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? भारत की वरिष्ठ सेक्सुअलॉजिस्ट, यौन विशेषज्ञ और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भूतपूर्व प्रोफेसर प्रेमा बाली कहती हैं कि आज का लड़का घर और घर के बाहर जो देखता है वो उसे सीधे सीधे सेक्स शब्द की ओर ले जाता है, लेकिन वो करे क्या?
17-18 साल की उम्र में और उससे पहले भी कुछ वर्ष हो सकता है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए उनको साधन चाहिए। वो साधन नहीं है जो आज से 50-60 वर्ष पहले हो सकता था कि शादी ब्याह जल्दी हो जाते थे और जो ही बच्चा या बच्ची जवान हुए और उनकी शादी हो जाती थी और पति पत्नी के बंधन में बन जाते थे और फिर उनको एक अपने सेक्स की पूर्ति का एक नॉर्मल जरिया मिल जाता था। लेकिन आजकल की दुनिया में जबकि बच्चों ने पढ़ना भी होता है, अपनी ज़िंदगी बनानी होती है और काम काज करने होते हैं, ब्याह शादी का जो रस्म है और जो उसकी उम्र है उसको आगे बढ़ा दिया गया है।
पटना स्थित भारतीय परिवार नियोजन संघ की मंजू कई वर्षों से युवा पीढ़ी के बीच यौन शिक्षा के काम में लगी हैं।
लड़कों का भी ये कहना है कि दोस्ती तो वो करना चाहते हैं लेकिन लड़की या तो गलत समझ लेती है या भाई से या फादर से पिटवा देती है। तो कोएड इंस्टीट्यूशन में भी हम जाते हैं तो इसी तरह का प्रॉब्लम रहता है। लड़कियां भी आईं क्लासरूम में, आगे के दो रो में बैठ गईं, लड़के आए पीछे के रो में बैठ गए, देर इज़ नो कम्युनिकेशन। और एक जो नॉर्मल हम उम्र 12-13 साल लड़के लड़की का रिलेशनशिप होना चाहिए, दैट इज़ टोटली लैकिंग। बस में भी ऐसा ही होगा, किसी ने किसी को कोहनी से लग गया, गलती से भी लग गया, तो उस पर भी काफ़ी बड़ा तमाशा बन जाता है।
इस तमाशे से हम सभी परिचित हैं। पटना की मंजू के बाद मिलें बंबई की मंजू वर्मा से, जो महाराष्ट्र में यौन शिक्षा की संस्था SECRT से जुड़ी हैं।
15-29 वर्ष के युवा वर्ग जो हमारे पास आते हैं, जिनमें से कुछ स्कूलों में जाते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, या स्कूल से बाहर के कॉलेज के बाहर के युवा वर्ग हैं, जिनमें जो जिनकी शादी भी हो चुकी है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है, ये लोग आते हैं हमारे पास सलाह के लिए।
और किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास?
उनकी समस्या ये रहती है कि समझो अगर वो लोग शादी करना चाहते हैं तो शादी के पहले उन्हें क्या समस्या आ सकती है, शादी के बाद उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में वो लोग जानकारी चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में वो लोग जानकारी चाहते हैं। उनके प्रश्न ऐसे रहते हैं जैसे हमारे कार्यक्रम के बाद हम लोग जब थोड़ा सा समय देते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो उसमें उनके प्रश्न ज़्यादातर जो हमने देखे हैं वो इस पर आधारित थे कि शारीरिक बदलाव, अगर लड़कों के लिए कार्यक्रम रहेगा तो वो लोग पूछते हैं कि लड़कियों में क्या बदलाव होते हैं, उसकी जानकारी तो हम लोग देते हैं लेकिन उसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी उन्हें चाहिए रहती है।
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
आप सुन रहे थे 1996 में प्रसारित हुई बीबीसी हिंदी रेडियो की खास सीरीज काम की बात और इसके प्रस्तुतकर्ता थे परवेज आलम। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरोलिना मारिन से आज सायना नेहवाल के हारते ही मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। सायना नेहवाल को महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जहां मारिन से सीधे गेम में हारना पड़ा तो उससे ठीक पहले विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को भी हार का सामना करना पड़ा था। सिंधु को महिला एकल वर्ग के अंतिम आठ के मुकाबले में चीनी ताइपे की ताई जू यिंग ने मात दी थी। इस तरह यूजिंग से सिंधु को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। वो पिछले साल अक्टूबर में फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी उन्हीं से हारी थी। और अब बात करते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित किया गया है। रानी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई भी किया है, जिसके लिए रानी और उनकी टीम तैयार है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए 25 खिलाड़ियों का नाम 25 खेलों से आया है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने रानी के नाम को इस अवार्ड के लिए भेजा है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचारों में ही आगे बढ़ते हैं। इस समय भारत और श्रीलंका के बीच पुणे में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जारी है और श्रीलंका ने टॉस जीतकर भारत को पहले क्षेत्र रक्षण के लिए बुलाया था। इस समय भारत 11.2 ओवरों में 106 रन बना के 2 विकेट पे खेल रहा है और अभी अभी एक दूसरा विकेट गिरा हुआ है। संजू सैमसन का विकेट गिरा है जिनको सिल्वा ने LBW आउट किया है। और अब से कुछ ही देर पहले पिछले ओवर में शिखर धवन 52 रन बनाकर लक्षण संधाकन की गेंद पर कैच आउट हुए थे। इसके अलावा KL राहुल खेल रहे हैं 43 रन पे नॉट आउट और अब हो सकता है विराट कोहली खेलने आए। लेकिन और इसके चलते अब बढ़ते हैं आगे और कार्यक्रम में समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। यूक्रेन ने कहा है कि अमेरिका के अधिकारियों ने उन्हें विमान दुर्घटना से जुड़ी अहम जानकारी दी है। बुधवार को ईरान में हुई इस दुर्घटना में 176 लोगों की मौत हो गई थी। इराक के सबसे प्रभावशाली शिया धर्मगुरु ने कहा है कि किसी भी विदेशी ताकत को इराक की किस्मत का फैसला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हुई रैलियों में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और जंगल की आग से निपटने के सरकार के तरीकों की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने कहा है कि कांगो गणराज्य में लैंडू और हेमा समुदायों के बीच हुए संघर्ष की वजह से कम 700 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि पूर्वी सीरिया में हुए एक हवाई हमले में ईरान समर्थक मिलिशिया समूह के 8 लड़ाकों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
और अब हम बता दें अपने श्रोताओं को कि इंडिया और श्रीलंका के बीच अंतिम T20 मैच जारी है जिसमें भारत 1-0 से आगे है और अभी क्रीज पर मनोज पांडे MK पांडे खेलने आए हैं और वो एक बॉल पर 1 रन बना चुके हैं। इसके साथ ही KL राहुल और मनोज पांडे दोनों क्रीज पर जमे हुए हैं और भारत का स्कोर इस समय 11.5 ओवरों में, माफ कीजिएगा, मनीष पांडे क्रीज पर हैं केएल राहुल के साथ। कार्यक्रम में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। कल बीबीसी इंडिया बोल में आपसे मुलाकात होगी। सभी सहयोगियों के साथ मोहम्मद शाहिद को दें अनुमति। नमस्कार।